सो प्रभु का धन्यवाद हो, हमें परमेश्वर ने मौका दिया कि हम परमेश्वर के भवन में उसकी आराधना करने के लिए आए। आज जो मैं आपके साथ थोड़ी देर के लिए विषय बांटना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें क्यों छुड़ाया है, Why God has redeemed us? परमेश्वर ने हमारा क्यों छुटकारा किया है, परमेश्वर ने हमें क्यों छुड़ाया है। हम एक दिन संसार में पाप में बंधे हुए थे, पर परमेश्वर ने मेरा और आपका छुटकारा किया। Why God has redeemed us? हमने पहला ग्रंथ उसका 10 अध्याय के पहले पद से लेकर 13 पद तक पढ़ा हमारी बहन किरण ने, और उसमें कुछ वर्णन है जो इसराइलों का वर्णन है कि किस प्रकार से इसराइलों को परमेश्वर ने जब छुटकारा दिया और आगे बढ़ते क्या कुछ उन्होंने त्रुटि की, लेकिन किस प्रकार से परमेश्वर ने उनके साथ व्यवहार किया। परमेश्वर न केवल हमारा सृष्टिकर्ता है, परंतु परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार हमारे जीवनों को ले चलता है। परमेश्वर योजना बनाता है और योजना बना करके हमारे जीवनों को ले चलता है, और इसीलिए यर्मिया 29 उसके 29 अध्याय 11-12 पद में इस तरह से लिखा है कि मैं जो योजना तुम्हारे लिए बनाता हूं वो हानि की नहीं परंतु लाभ की है। हमारा परमेश्वर बहुत ही अच्छा प्लानर है, योजना बना रहा है। मैं अक्सर बात करता हूं कि हम लोग जो मसीह में आगे बढ़ रहे हैं हमें भी एक अच्छी योजना बना करके चलने वाला व्यक्ति होना है। सो परमेश्वर हमारा योजना बनाने वाला, उसने आरंभ से सृष्टि के आरंभ से, हम गड़बड़ देखते हैं, हम सोचते हैं मनुष्यों के नाते कि कुछ गड़बड़ हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपनी योजना में कर एक एक समय में एक एक चीज में आगे ले चल रहा है, और आज भी जो हम व्यतीत कर रहे हैं वो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है। तो परमेश्वर न केवल हमारा है, परमेश्वर योजना बनाने वाला है, उसको संचालित करता है, लेकिन सब कुछ पर वो नियंत्रित करता है, सब कुछ को वो अपने नियंत्रण में रखता है, क्योंकि वो सार्वभौमिक परमेश्वर है। और आज सुबह निर्गमन की पुस्तक से कुछ अध्यायों पर विचार करेंगे, उन चार बातों को देखना चाहेंगे कि परमेश्वर ने क्यों हमें छुड़ाया है। जो काम परमेश्वर ने इसराइलियों के साथ किया, किसी उद्देश्य अभिप्राय से उनके साथ किया, वही उद्देश्य अभिप्राय हमारे जीवन में भी लागू होता है, अलग नहीं। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं और बाइबल की पूरी कहानी को देखते हैं, जो उसकी हिस्ट्री है वो 6 भागों में बांटी जा सकती है। पहला है मनुष्य की सृष्टि है, उत्पत्ति से शुरू होता है। दूसरा उसका गिरना है, मनुष्य का गिरना है, पाप है। तीसरा इसराइल का इतिहास है। चौथा छुटकारा है। पांचवा कलीसिया है। और फिर छठा महिमा है। और ये 6 पूरे भाग हैं बाइबल के। अगर हम 6 भागों को अच्छी तरह समझ जाएं, तो बाइबल को हम अपने मस्तिष्क में आसानी से बैठा सकते हैं। सुजाव में निर्गमन की पुस्तक में आते हैं, आइए मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन में, हम आएंगे उसके 4 अध्याय को, लेकिन थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूंगा। क्यों परमेश्वर यहां पर इसराइलियों को, जब निर्गमन की पुस्तक में आते हैं तो वो इसराइलियों को एक छुटकारा दे रहा है। कहां से छुटकारा दे रहा है, क्या परिस्थिति थी, क्या था। जब हम पूरा पृष्ठभूमि में जाते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, पाप आया, सब कुछ आया, लेकिन उसके बाद जब उत्पत्ति के पहले भाग में जो पहला अध्याय से 11 अध्याय तक है वो एक ऐसी रचना है जो अब समाप्त हो गई सृष्टि। अब 12वें अध्याय से हम एक दूसरी सृष्टि को देख रहे हैं जो अब्राहम की अगुवाई में आगे बढ़ती है। अब उनका अगुवा या उनका पिता अब्राहम है, और अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाहट दी, और बुलाहट देने के बाद परमेश्वर ने अब्राहम से एक प्रतिज्ञा की। और उत्पत्ति की पुस्तक में एक और विशेष बात है, वो विशेष बात यह कि परमेश्वर ने अपने आप को उत्पत्ति की पुस्तक में सर्वशक्तिमान परमेश्वर करके प्रकट किया है, ऑलमाइटी गॉड। और इसीलिए जब अय्यूब की पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो अय्यूब में भी की पुस्तक में भी बार बार परमेश्वर अपने आप को सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहकर पुकारता है, ऑलमाइटी गॉड, क्योंकि अय्यूब उसी काल का व्यक्ति है, उसी काल का व्यक्ति है। तब अब्राहम के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या घटना घट रही है, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर योजना बनाने वाला है, परमेश्वर योजना को जानता है, परमेश्वर जानता है किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे और कैसे मैं इनके साथ होऊंगा, कहां उतार चढ़ाव होगा, किस कैसे मैं इनके साथ व्यवहार करूंगा। और तब जब परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है 17वें अध्याय में, वो कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं और मैं तुझे बुला रहा हूं और ये प्रजा आगे चल करके 400 साल तक बंधुवाई में रहेगी और मैं फिर इसको बंधुवाई से फिर छुड़ा लूंगा। अब ये परमेश्वर की प्लानिंग है, परमेश्वर की योजना है और उस योजना में होकर वो किस प्रकार से अपनी प्रजा को ले चल रहा है। जब आगे बढ़ते हैं तो अब्राहम के बाद इसहाक आता है, इसहाक के बाद याकूब आता है और याकूब आरंभ उसका जीवन कुछ और है, वो शरीर में है आरंभ उसका होता है, अपने स्वयं में आरंभ होता है, लेकिन उसके जीवन में एक परिवर्तन आता है। और जब परिवर्तन आता है, पहले याकूब हमेशा परमेश्वर को पुकारता है तो कहता है मेरे पिता का परमेश्वर, मेरे दादा का परमेश्वर, इस तरह से पुकारता है इब्राहिम इसहाक का परमेश्वर। लेकिन जब परमेश्वर याकूब को दर्शन देता है तो दो काम होते हैं, याकूब का नाम बदलकर इज़राइल पड़ता है। अगर आप उत्पत्ति उसके 32 अध्याय में देखेंगे, दो बार परमेश्वर ने इसको दोहराया, 32 अध्याय में और उसके 35 अध्याय में परमेश्वर ने कहा तू इज़राइल है। और इस इज़राइल को परमेश्वर ने चुन लिया और इसको चुनकर परमेश्वर ने एक और पदवी उसको दे दी, उसको अपना पुत्र कहला दिया, इज़राइल मेरा पुत्र है, इसराइल मेरा पहलौठा है। लेकिन चूंकि ये हिस्ट्री चलती आ रही, इतिहास चलता आ रहा है, अब धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की योजना में होकर बढ़ रहे हैं। अब जब हम उत्पत्ति की आखिरी पुस्तक में आते हैं, अब ये लोग मिस्र में आ गए, मिस्र में आ गए, क्योंकि उस समय मिस्र में यूसुफ था, वो शासक था और जो कुछ भी घटना घटी है उसी के साथ आकर ये लोग रह रहे हैं। लेकिन उस समय मिस्र में फिरौन शासक है, फिरौन एक पदवी है, कई बार फिरौन शब्द आया है, फिरौन एक पदवी, जैसे आज गवर्नर, उनके नाम अलग थे लेकिन अब ये शासक है। और उसके शासन काल में ये इसराइल लोग बहुत ही कठिनाई में है, व्याकुलता में है, परेशानी में है। अब परेशानी में होने के नाते जब इतने व्याकुल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तब वो परमेश्वर को पुकार रहे हैं। जब परमेश्वर को पुकारने लगे, यद्यपि मनुष्य के इसमें ही सब कुछ हो रहा है लेकिन सार्वभौमिक परमेश्वर के नियंत्रण में और उसकी योजना में हो रहा है। हमें बार बार अपने परमेश्वर के सम्मुख आना है। अब वो क्या हो रहा है, ये मैं सब तीसरा अध्याय निकालिए, तीसरा अध्याय उसका 7 पद में। अब क्या हुआ, परमेश्वर हमारा कैसा परमेश्वर है, निर्गमन उसका 3 अध्याय 7 पद। और यहोवा ने कहा निश्चय मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की पीड़ा को देखा है और उनसे बेगार कराने वालों के कारण उनकी पुकार पर ध्यान दिया है, क्योंकि मैं उनके दुखों को जानता हूं। 3 बात परमेश्वर कह रहा है अपनी प्रजा के लिए, अपनी इसराइल के लिए। वो क्या कह रहा है, क्यों, क्योंकि परमेश्वर ने उनको एक विशेष नाम दे दिया था, विशेष संबंध स्थापित कर दिया था, विशेष पद दे दिया था, यह इसराइल मेरी प्रजा है, ये इसराइल मेरा पुत्र है। और अब जब इसराइल दुख में है, परेशानी में है और चिल्ला रहे हैं तो कह रहे हैं मैंने उनकी पीड़ा को देखा है, मैंने उनकी पुकार को सुना है, ध्यान दिया है और मैं उनके दुखों को जानता हूं। मेरे प्रिय, कितना अद्भुत प्यारा हमारा परमेश्वर है, कितना अद्भुत परमेश्वर है। क्या इससे मुझे और आपको प्रोत्साहन नहीं मिलता, क्या इससे मुझसे और आपको साहस नहीं मिलता, एक विश्वास की बढ़ोतरी नहीं होती कि जिस परमेश्वर को हम जानते हैं, उनकी आराधना करते हैं, वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारी पीड़ाओं को, हमारी समस्याओं को, हमारी कठिनाइयों को, हमारी व्याकुलता को, हमारी बेचैनी को देखता है। वो कह रहा है मैंने देखा है, वो हमारे ऊपर दृष्टि रखने वाला परमेश्वर है, उसने हमें बना करके या बचाकर छोड़ ही नहीं दिया, लेकिन वो हमें देखता है। दूसरी बात कह रहा है कि वो उनकी पुकार को सुनता है। कई बार हमें ऐसा लगता है हम कब तक प्रार्थना करते रहेंगे, हमें भी, हम अपने जीवन में, मैं अपने जीवन में संघर्ष करता हूं, आप अपने जीवन में संघर्ष, लेकिन परमेश्वर पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। इज़राइल का परमेश्वर या परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज मेरा और आपका परमेश्वर है, कह रहा है मैं उनकी पुकार पर ध्यान देता हूं। दूसरी बात, मैं उनके दुखों को जानता हूं। इसराइल के उस प्रजा के दुखों को जाना, और तब क्या हुआ, तब परमेश्वर उतर आया, लिखा है मैं उतर आया कि मैं उनको हाथ से छुड़ाऊं और अच्छे विकसित देश में पहुंचाऊं। यह परमेश्वर की योजना, मैंने उनके दुख को देखा, मैंने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, मैंने उनकी पीड़ाओं को सुना और यह सब कुछ देखा, और मैं इसलिए उतर आया। जब यह संसार पाप में घिर गया, नाश हो रहा था, वो अपने प्रयास कर रहा था, परमेश्वर ने संसार के पाप की पीड़ा को देखा, मनुष्य असहाय था, अपने आप छुटकारा पा नहीं सकता था, बहुत प्रयास किया और कहीं कोई प्रार्थना, कोई कुछ खोज में लगा था, मनुष्य कुछ नहीं कर सका। परमेश्वर ने मनुष्य को देखा और उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। यीशु इस पृथ्वी पर उतर आए। मेरे प्रियो, वो इसराइल का परमेश्वर आज मेरा और आपका परमेश्वर है। यीशु इस पृथ्वी पर उतर आए ताकि वो मुझे और आपको भी छुड़ा ले, ताकि वो मुझे और आपको भी बचा ले। ये इसराइल की पीड़ा, उस समय की पीड़ा, बाद में वहां संसार की पीड़ा को भी देखते हैं, और तब हम देखते हैं किस प्रकार से उसने कहता है कि मैं ना केवल छुड़ाऊं लेकिन एक अच्छे देश में पहुंचा दूं। प्रभु का धन्यवाद हो, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया, ना केवल उसकी संतान हो गए लेकिन उन्हें परमेश्वर ने अपने अनंत राज में प्रवेश कराया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, वो अनंत देश में मुझे और आपको ले जाने के लिए तैयार हो गया। ये बाइबल की एक विशेषता है, बाइबल अलग टुकड़ों में नहीं बटी हुई है। मैं बार बार कहता हूं, पुराना नियम एक परछाई है और जब हम उसको पहचान लेते हैं तो नियम नियम को और अधिक समझ लेते हैं, और हर जगह हम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की कार्य योजनाओं को देखते हैं हर जगह। अब ये परमेश्वर इसराइल के साथ व्यवहार कर रहा है, ये हुआ, और तब परमेश्वर मूसा को बुलाता है। मूसा से तीन बात कहता है, मूसा आ, मूसा मैं तुझे भेजूंगा, मूसा तू लोगों को निकाल ले आया। इसी आगे पद में, 11 पद में, 10 पद में ध्यान दीजिए, 10 पद, इसलिए अब आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा जिससे कि तू मेरी प्रजा अर्थात इसराइल को मिस्र से निकाल ले आए, निकाल ले आए, अब आ भेजूंगा निकाल ले आए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया। इसराइल मिस्र की बंधुआई में मिस्र पाप को प्रदर्शित करता है, मिस्र संसार का प्रतीक है, और परमेश्वर ने जो इसीलिए निर्गमन नाम दिया है। अब जब परमेश्वर यहां पर निर्गमन में जो काम कर रहा है वही कार्य आगे चल के हम प्रभु यीशु मसीह को करते हुए देखते हैं जो उसने मेरे और आपके जीवन में किया, वो सारी चीज को हम एक साथ एक के बाद एक तरह से देखते चले आते हैं। जब परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया, मैंने कहा कि इस अभी तक परमेश्वर अपने आप को सर्वशक्ति नाम से प्रदर्शित कर रहा है, प्रकट कर रहा है, लेकिन तब जब मूसा को उसने खड़ा किया और मूसा को भेजा तो मूसा को तैयार करते समय सबसे पहली बार मूसा से परमेश्वर ने कहा मैं यहोवा हूं। मूसा कहने मैं कैसे जाऊंगा फिरौन के पास, फिरौन इतना कठोर हाकिम है। इसके पीछे परमेश्वर की योजना थी क्योंकि परमेश्वर उसको कठोर बनाया था। परमेश्वर इसराइलियों को कुछ दिखाना चाह रहा था, सिखाना चाह रहा था, मूसा को कुछ दिखाना चाह रहा था, मूसा को कुछ सिखाना चाह रहा था, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ को नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है। लेकिन छठे अध्याय में आइए, निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 6 2 पद, क्या कह रहा है परमेश्वर यहां पर। परमेश्वर ने मूसा से फिर बातें की और कहा मैं यहोवा हूं, मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से इब्राहिम, इजाक और याकूब को दर्शन दिया, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। मैंने इस नाम सुना लेकिन मैं अब तुझे यहोवा के नाम से मैं तुझ पर प्रकट हो रहा हूं। वो कह रहा है और मैंने उनके साथ अपनी वाचा बांधी कि वो कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहे हैं उन्हें दे दूंगा। और तब बार बार इस छठे अध्याय में और सातवें अध्याय में बार बार वो मूसा को स्मरण दिलाता है मैं यहोवा हूं, मैं यहोवा। और हमें याद रखना चाहिए पुराने नियम का यहोवा नए नियम का यीशु है। पुराने नियम का यहोवा छुटकारा देने वाला, नए नियम का यीशु है जिसने संसार के पापों की छुड़ौती के लिए अपने आप को बलिदान किया है। लेकिन अब जो विशेष चीज, जो ये सारा थोड़ा सा तस्वीर के रूप में, बैकग्राउंड के रूप में आपके सामने मैंने रखा है, पर जो आज खास बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, देखना चाहते हैं क्यों परमेश्वर ने इसराइल को छुड़ाया। केवल वो पुकार रहे थे इसलिए, केवल परमेश्वर के कष्ट को देखा था इसलिए, ठीक है, परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर चिंता करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर ये आशा है कि उसके लोग कनान में प्रवेश करें, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर की अपेक्षाएं हैं। और यदि मेरे भाई और बहनों, एक दिन मैं और आप भी पाप में मरे हुए थे, संसार के विलासों के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे थे, शायद हम उस समय प्रभु को नहीं जानते थे, अपने मन के अनुसार हम चलते थे, पाप से हम लिपटे पड़े थे, सब कुछ ऐसी स्थिति थी और हमारी कोई आशा नहीं थी, हम नाश होते चले आते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो प्राणी पाप करेगा वो निश्चय मर जाएगा, हम दंड के कहां लायक थे। परमेश्वर का वचन कहता है सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। जब तक हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण किया था, हम भी उसी प्रकार से मिस्र की गुलामी में थे, हम भी उसी प्रकार से पाप के बंधन में थे, पाप की गुलामी में थे। और यदि आज भी यहां पर कलीसिया में, इस समूह में, यदि आप आज तक आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, यदि आपने अभी तक अपने पापों की क्षमा नहीं मांगी, यदि आज तक आपने पश्चाताप नहीं किया, यदि आपको अभी तक नए जन्म का अनुभव नहीं मिला, तो जान लीजिए आप भी उसी तरह से मिस्र की बंधुआई में अभी भी हैं, और आपको भी उस छुटकारे की जरूरत है जिस तरह से इन इसराइलियों को छुटकारे की जरूरत थी, जिस तरह से मुझे और आपको जिन्होंने विश्वास किया उन्हें छुटकारे की जरूरत है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो दिन आज आपके लिए बन सकता है यदि आज आप पश्चाताप करेंगे, यदि आज आप उसको अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, यदि आज आप उसको स्वीकार करेंगे, प्रभु आज आपको अनुभव प्रदान करेगा कि आप पाप से छुटकारा पाएं और प्रभु के राज में वारिस हो सकें। लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद क्यों प्रभु इनको छुड़ाना चाह रहा है, आइए अब मेरे साथ आइए, अब मैं उस बिंदुओं पर आगे जाऊंगा। चार बातों को हम देखना चाहेंगे कि परमेश्वर ने क्यों इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, क्यों परमेश्वर ने मुझे और आपको पाप के बंधन से छुड़ाया। पहली बात, चार अध्याय उसका 22 पद, तो फिरौन से कहना यहोवा यूं कहता है इसराइल मेरा पुत्र है, वो मेरा पहलौठा है, इसलिए मैंने तुझसे कहा है मेरे पुत्र को जाने दे जिससे कि वो मेरी सेवा करें। पहली बात निर्गमन 4:22-23 पद, मेरे पुत्र को जाने दे जिससे वे मेरी सेवा करें। यदि परमेश्वर ने मुझे और आपको छुड़ाया है, बचाया है पाप के बंधन से, मिस्र की गुलामी से, मैं बार बार कह रहा हूं मिस्र पाप का प्रतीक है, मिस्र संसार का प्रतीक है, हम एक दिन उस पाप में बंधे थे, हम उसकी गुलामी में थे, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस पाप से छुड़ा लिया, क्योंकि वो नीचे उतर आया, उसने अपने आप को बलिदान किया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और उस क्यों के द्वारा प्रभु ने मुझे और आप पर को छुटकारा दे दिया। अगर आप छुटकारा दे दिया, छुड़ा लिया, वहां से निकाल लिया, तो क्यों, पहली बात ताकि मैं और आप उसकी सेवा कर सके। केवल प्रचार करना ही सेवा नहीं, कि मैं पास्टर बन जाऊं या प्रचारक बन जाऊं तो ही सेवा नहीं, मसीह जीवन हम इसलिए बचाए गए हैं ताकि उसकी सेवा करें। प्रभु यीशु मसीह सुनकर मैं सेवा लेने नहीं लेकिन सेवा करने के लिए आया हूं। मेरे प्रियो, एक एक विश्वासी, एक एक प्रभु का जन, जब आप किसी को गवाही देते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, आप ये उसकी सेवा में शामिल हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ जगत के सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। एक व्यक्ति जो पाप से छुड़ाया जाता है, जीवन को प्राप्त करता है, उद्धार को प्राप्त करता है, उस बंधन से छुड़ा करके परमेश्वर के राज में प्रवेश करता है, उसका जीवन एक गवाही का जीवन बन जाता है। ये गवाही देना परमेश्वर की सेवा करना है। जब आप लोगों को उस उद्धार के कार्य को बांटते हैं, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके दुख में आप शामिल होते हैं, ये एक सेवा है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम्हें कोई मेरे नाम से एक गिलास ठंडा पानी पिलाए तो अपना प्रतिफल ना खोएगा। यदि आप किसी को एक गिलास पानी भी पिलाते हैं वो सेवा है। आपका व्यवहार, मेरा और आपका व्यवहार, मेरा और आपका तरीका, मेरा और आपका जीवन हमेशा दूसरों के लिए बन जाता है। जब आप यहां पर बैठते हैं बाहर निकलकर चाय पीने के लिए और बैठकर आपस में बात करते हैं, तो उस बातचीत में जब आप एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उसके दुख को बांटते हैं, वो एक सेवा है। मेरे प्रियो, मसीह जीवन सेवा का जीवन बन जाता है। यदि निर्गमन की पुस्तक का आप अध्ययन करेंगे, बहुत ही सुंदर पुस्तक है, उसमें क्रम बने हुए हैं। परमेश्वर ने उनको छुड़ाया है, छुड़ाने के बाद छुटकारा दिया है, फिर परमेश्वर उनको विधियां दी है, फिर परमेश्वर उनके लिए तरीके बनाए, फिर आराधना के उपासना के तरीके दिए, फिर उसके लिए आराधना उपासना की विधियां बनाई है, फिर उसके साथ कैसे प्रभु उनको लेके चल रहा है, कैसे आज्ञा दे रहा है। बहुत सुंदर रीति से पूरे 50 अध्याय विभाजित है निर्गमन की पुस्तक है। लेकिन जब आप यहां पर आराधना में आते हैं, यहां पर आराधना में आना, बाइबल अध्ययन में आना, ये एक सेवा है। हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो कहना चाहिए एटीट्यूड है, हमारा जो तरीका है, हमारा स्वभाव है, हमारा जीवन परमेश्वर की सेवा में शामिल हो जाता है। क्या मतलब है? जब इसराइल लोग चल रहे थे, जैसे परमेश्वर उनको छुड़ाया, उनकी यात्रा में थे, जरूर उनके जीवन में उतार चढ़ाव आए, कई बार उनके अंदर निर्बलताएं भी आई, वो कुड़कुड़ाए भी, वो रोए भी, दोषारोपण में गिरे भी, उठे भी, लेकिन उन सारी यात्रा में वो परमेश्वर के काम को देखते रहे और किसी ना किसी प्रकार से परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ते रहे। एक मसीह जीवन, एक छुटकारा पाया जीवन, वो दूसरे के बारे में सोचते हुए, उसकी भलाई के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ता है, वो सेवा है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई तुम्हें मेरे नाम से एक फरलांग जाने के लिए कहे तो तुम उसके साथ दो फरलांग जाना, वो सेवा है। किसी बीमार को अस्पताल में ले आना, वो सेवा है। किसी आश्रम में पड़े व्यक्ति की सुधि लेना, वो सेवा है। किसी के वस्त्र को ढक देना, वो सेवा है। किसी छोटे बच्चे की सहायता कर देना, वो सेवा है। हमारा सोच क्या है? वो कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि तुम मेरे इस प्रजा को, मेरे इन बच्चों को, मेरे इन बेटे को जाने दे, ताकि वे मेरी सेवा कर सके। और एक हर एक परिवार में, हर एक जन, यदि प्रभु ने मुझे और आपको छुटकारा दिया है तो इसलिए दिया है ताकि हम उठते बैठते चलते फिरते उस बात को याद कर सके, मैं प्रभु यीशु मसीह की दासी हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह दास हूं, मैं उसकी सेवा में समागी हूं। केवल खड़े होकर पुलपिट पर प्रचार करना ही सेवा नहीं है, हम सब यहां पर सेवा है, आप सब। और यह मसीह की बहुत बड़ी महानता है, क्यों आज 12 देश में वो लोग जो प्रभु के नाम से यहां पर आए, विलियम कैरी जो आए, केवल उसने बाइबल को नहीं छापा, लेकिन किस प्रकार से उस समय महिलाओं को, स्त्रियों को, बच्चों को, इन महिलाओं को कोई शिक्षा के स्थान नहीं था उनका, उस विलियम कैरी ने प्रयास किया और उसके द्वारा सबसे पहले महिलाओं को साधन मिला ताकि वो पढ़ाई का साधन आगे बढ़े। सती प्रथा को के लिए जागृत करने वाला, जिसमें स्त्री को मरना था, विलियम कैरी और उसके एक साथी के द्वारा यह सब कुछ संभव होने पाया। आज जो विलोर मेडिकल कॉलेज कैसे बन गया, एक मिशन थी, उनकी बेटी थी, जब वो थे तो 3 महिलाओं को वो प्रसव पीड़ा में थी, लेकिन उन्होंने कहा वहां पर कोई भी एक डॉक्टर नहीं था, लेडी डॉक्टर नहीं थी, उन महिलाओं ने कहा कि हम किसी भी पुरुष डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे अपने प्रसव पीड़ा के समय में। यो बच्ची वापस गई, उसने कहा मैं पढ़कर आऊंगी, उसने मेडिसिन कंप्लीट करी और आके एक झोपड़ी में वो कार्य आरंभ किया। आज पूरे भारत में उसके द्वारा सेवा करी। कहां से आरंभ हुआ? एक छोटे से स्थान से। मेरे प्रिय, आप इतने लोग यहां पर बैठे हैं, जिस दिन आपके अंदर सेवा भावना उमड़ जाएगी, आप घर में नहीं बैठ सकेंगे, آپ کچھ نہ کچھ دوسرے کے لیے کرنے کے لیے تتپر اور تیار ہو جائیں گے، تب کیول وچن پڑھنا نہیں رہے گا، میں کیسے کس کے بارے میں کس کے لیے کیا کرتے ہوں۔ جتنے لوگوں کا ہم اتہاس پڑھتے ہیں وہ میرے اور آپ کے سمان سادھارن لوگ تھے۔ لیپرسی مشن کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے شروع ہو گیا؟ ایک چھوٹے سے استھان سے، ایک بہت کم پیسے سے۔ ان لوگوں کی جیونیوں کے بارے میں، ان کی کہانیوں کے بارے میں آپ پڑھ کے دیکھیے، آپ کو ملے گا، پریرنا ملے گی۔ میرے پیو، کوئی تھا جس نے سیوا کے رہسیہ کو سمجھ لیا؟ کوئی تھا؟ میں اور آپ اپنے جیون کو کتنا کسی کی سیوا کے لیے سمبھاگی کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہم کلیسیا میں آتے ہیں، بہت اچھی بات ہم بہت کچھ اور کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے اندر میں یہ اچھا جاگرت ہوتی ہے، پربھو آپ مجھے بتائیے میں کیسے سیوا کر سکوں، کیسے میں وہ کر سکوں جس سے آپ پرسن ہو، آپ کو مہیم ملے اور اس کے دوارا دوسرا جن آشیشت ہو سکے، دوسرا جن آشیشت ہو سکے۔ ادھکتر سمے ہمارا اپنے ہی رونے میں ویتیت ہو جاتا ہے، اپنے ہی رونے میں ویتیت ہو جاتا ہے۔ میں بیچارا، میں بیچاری، اسی میں نہیں۔ جس دن آپ اپنی درشٹی اپنے اوپر سے ہٹا کر دوسرے کے اوپر کرنے لگیں گے، اس دن آپ ایک قدم آگے بڑھ جائیں گے۔ میں نے اس لیے تمہیں چھڑایا ہے میرے وشواسی بھائی بہنوں، پرمیشور نے مجھے اور آپ کو اس لیے چھڑایا ہے تاکہ ہم اس کی سیوا کر سکیں۔ بارہ بنکی میں ہم لوگ ٹریننگ کر رہے تھے اور ایک بار بھدوئی سے کچھ بچے آئے تھے، اور دو بچے تھے جو مزدوری کرتے تھے، آج بھی مجھے نام یاد ہے اس کا، ایک آنند تھا اور ایک اور دوسرا ہے، اور جب ہم ان کو پڑھا رہے تھے تو میں نے ان کو چناتی تھی، میں نے کہا اگر آپ دسویں کلاس پڑھ رہے ہیں تو کیا آپ دو بچوں کو ایک گھنٹے، جو ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کو کیا آپ بیٹھا کر پڑوس میں اپنے پڑھا نہیں سکتے؟ اگر آپ بنا پیسے لے ان دو بچوں کو اگر آپ پڑھاتے ہیں، آپ ان کا جیون نرمان کر رہے ہیں، یہ آپ کی سیوا سے، تب آپ پربھو یشو مسیح کے پریم کو بانٹیں گے، وہ سنیں گے۔ ان کو پربھو نے پتہ نہیں کیسے من من کے کہا، وہ گئے دونوں نے ماں مل کر بدوئی میں نان فارمل کلاسز شروع کر دی اپنے دونوں بچوں نے، ہم کچھ نہیں سہایتا کرتے تھے، اور کتنے دن تک انہوں نے کتنے بچوں کو پڑھایا، مدد کری۔ ہمارے سلائی سینٹر چلتے تھے، 600 ہم لوگوں نے مہیلاؤں کو ٹرین کرایا، اور میں ہمیشہ جب بھی ہم ان کو سرٹیفکیٹ دیتے تھے ہم ان سے یہ وعدہ لیتے تھے کہ آپ کم سے کم کسی ایک غریب بچی کو آپ سلائی سکھائیں گے تاکہ اس کو اپنا جیون کو نرمت کرے، اور دوسرے کئی طریقے ہیں، اور لوگوں نے کرا، بہت لوگوں نے کرا۔ وچن ہمیں پریرت کرتا ہے کچھ کرنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے۔ سچ مجھے ہماری کلیسیا میں بہت لوگ ہیں، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی سیوا کرنے کے لیے تیار ہونا، تتپر ہونا ہے، بہت لوگ ہیں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے اس کی سیوا میں سماگی ہو سکتے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کو سوچنا ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا سمے، ہمارا پریشرم، ہمارا سمرپن، ہماری سوچ، ہماری اچھا، ہماری شکتی، اس لیے چھوڑا رہا ہوں میں تاکہ وہ میری سیوا کر سکیں۔ دوسری بات، آگے چل کے پانچویں ادھیا میں، اس کے پہلے پد میں، تب موسیٰ اور ہارون نے فرعون کے پاس جا کر کہا، اسرائیل کا پرمیشور یہوہ اس پرکار کہتا ہے، میری پرجا کو جانے دے کہ وہ میرے لیے جنگل میں ایک پرو منائیں، میرے لیے ایک پرو منائیں، ٹو سیلیبریٹ دا فیسٹیول۔ کتنی اچھی بات ہے نا، ہم یہاں پر کلیسیا میں آتے ہیں پرو منانے کے لیے۔ ابھی ہم نے ایسے لوگ سوچتے ہیں کہ کرسچنز کے پاس سب سے کم پرو ہے، ہم ایسے بھارت دیش میں آتے ہیں جو پروں کا پردھان دیش مانا جاتا ہے، پرو پردھان دیش، ہر دن ان کے ہے نا، کل بھی ہے، پرسوں بھی ہے، آپ دیکھتے ہی آتے جاتے ہیں، ہے نا، لیکن ہم ان سے زیادہ پرو کو منانے والے لوگ ہیں۔ کتنے اتوار ہوتے ہیں؟ 52 ہے نا، دن کے انوسار سے، اگر فروری 28 ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس سال قریب 238 کے بعد، 238 کے بعد جولائی میں سنیچر 5، اتوار 5، سوموار 5، قریب 238 کے بعد، تو اس میں سال میں ڈھونڈ رہا ہے، ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے، لیکن ہم 54 अगर यहां पर इकट्ठा होते हैं इतवार में उसकी आराधना करने के लिए, यह पर्व का समय है। इसीलिए मैंने कहा अगर आप सोच कर आए कि हम पर्व मनाने जा रहे हैं तो और जल्दी निकल कर आएंगे। वो पर्व मनाने जाते तब तो बहुत जोश में रहते ना, उसी जोश में आना चाहिए। वो कह रहा है कि मेरी प्रजा को जाने दे कि हम पर्व मनाएं। पर्व एक आनंद का समय होता है, एक उत्साह का समय होता है ना, लोग जोश का समय होता है। और हम अपने प्रभु यीशु मसीह, यही था सबसे पहला पर्व निर्गमन, उसके बारहवें अध्याय में हम देखते हैं। जैसे वो छुटकारा उन्होंने पाया और छुटका पाया, वो सबसे पहले फसह का पर्व था। और वो फसह का पर्व बनाने का वही सिद्धांत था जो आज प्रभु भोज में संभागी होने का सिद्धांत है। कोई उसमें प्रदेशी भाग ना लेने पाए, अर्थात जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, जिन्होंने छुटकारा नहीं पाया, वही पूरा वही सिद्धांत है पहला। और मेरे प्रियो, एक विश्वासी का जीवन मेरा और आपका, इसीलिए मेरे और आपके लिए संडे इंपॉर्टेंट है, आराधना का दिन महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम इतवार को घर में नहीं बैठना मांगते, हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे, परमेश्वर के लोगों के साथ आराधना करेंगे, क्योंकि हम पर्व में शामिल हैं। प्रभु ने हमें इसलिए छुड़ाया है। जो उसके महत्व को नहीं जानते वो साल में शायद 3 बार जाते हैं, कुछ तो जीवन भर में 3 बार जाते हैं। हैचिंग, मैचिंग, डिस्पैचिंग। जब पैदा हुए छिड़का दिया, हैचिंग हो गए। जब शादी का समय आया चर्च में चले गए, मैच करा दिया। जब मर गए तो डिस्पैच करा दिया। साल में 3 बार, पूरे जीवन में 3 बार। नहीं, परमेश्वर ने मुझे और आपको बचाया है, छुड़ाया है। हमें उसके इस दिन के अर्थ को समझना है, उनके दिन, उस दिन के अर्थ को समझना है। और इसलिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, परमेश्वर के लोगों की संगति में जाना, परमेश्वर के लोगों के साथ आनंद मनाना, ये एक पर्व है। जब हम आपस मिलते हैं, वो कह रहा है मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि हम उसमें पर्व मनाएं। किस प्रकार से हम उस पर्व की प्रिपरेशन करते हैं। और जब वो पर्व की तैयारी होती थी तो बहुत तैयारी करनी पड़ती थी उनको पहले से। फसह का पर्व अगर नए नियम में भी आते हैं तब भी आप देखेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे, जी उठने के बाद उन्होंने इतवार के दिन को, परमेश्वर के पुनरुत्थान का दिन को वो आराधना का दिन चलाया, वो पर्व का दिन बन गया। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए इसकी महत्ता होनी चाहिए। हम कितना अधिक इस दिन का महत्व जानते हैं जब हम प्रभु की उपस्थिति में आकर प्रभु के लोगों के साथ उसकी आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसके नाम को धन्य कहते हैं। कलीसिया में बैठकर जितनी देर हम बैठते हैं हमारा हृदय आनंद और धन्यवाद से भरा रहता है। प्रभु हम आपके आभारी हैं क्योंकि आपने मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया, मारे गए, गाड़े गए, मुझे आजाद किया, इसलिए आजाद कर दिया ताकि मैं आपके साथ इस पर्व के का आनंद उठा सकूं। जब हम प्रभु भोज में संभागे होते हैं हम कितना प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, ये इतवार का दिन हमारे लिए बोझिल दिन नहीं होता, आराधना का दिन हमारे लिए बोझिल दिन। हाँ, कभी बीमारी आती है, कभी कुछ और बात आती है, वो चीज दूसरी होती है मनुष्य के साथ। लेकिन हमारी प्राथमिकता, हमारी जिज्ञासा क्या होती है, इस बात पर प्रभु जानता है। हम रूढ़िवादिता में नहीं आते, लेकिन हम परमेश्वर के साथ संबंध में जीकर आगे चलते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, तब वो आगे बढ़ना चाहता है, एक और बात कहता हूं तीसरे पद में। तब यहोवा, तब उन्होंने कहा, इब्रानियों के परमेश्वर ने, यहोवा ने हमें दर्शन दिया, कृपया हमें जंगल में 3 दिन की मार में जाने दे कि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ा सकें, हम यहोवा के लिए बलिदान चढ़ा सकें, ऐसा ना हो कि हमारी वह महामारी अथवा तलवार द्वारा हम टूट पड़े। तीसरी बात, पहली बात, हमें जाने दे कि हम उसकी सेवा करें। दूसरी बात, जाने दे कि हम पर्व मनाएं। तीसरी बात, जाने दे कि हम परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएं, हम परमेश्वर बलिदान चढ़ाएं। पौलुस क्या कहता है, सब कुछ परमेश्वर की ओर से, रोमियो उसका 11 अध्याय उसका 36 पद, सब कुछ परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लिए, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। ये सब कुछ, चाहे जीवन में जो कुछ भी है, जीवन, स्वास्थ्य, सादर, महिमा, धन, जो कुछ भी है, सब कुछ परमेश्वर की ओर से, और तब आगे चल के कहता है बारहवें अध्याय के पहले पद में, अतः हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवित पवित्र और बहाता बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और संसार के दृश्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के न हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की सिद्ध भली बहुत इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। अपने शरीरों को, मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी में कई बार शरीर बहुत रुकावट आता है। शरीर सोच में, शरीर सुस्ती में, शरीर कार्य में, शरीर विचारों में, बहुत सारी बात, शरीर संबंधों में बहुत सारी चीज आती। बलिदान जब उस समय चढ़ाया जाता था सरल नहीं होता था। निर्गमन उसके बारहवें अध्याय में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि नर होना चाहिए, पायलट होना चाहिए। निर्गमन उसके बारह अध्याय में और उसके पांच पद में, तुम्हारा मेमना निर्दोष नर, वो मेमना हो, वो निर्दोष हो, वो नर हो। और यही सबसे पहले मेरे और आपके लिए, ये बलिदान पहले लोग चढ़ाते रहे हैं, वो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन वो बलिदान में सरलता आसान नहीं होता था। जब याजक खड़ा होता था और मेमने को लाया जाता था, मेमने के ऊपर सारे हाथ रखे जाते थे और मेमने को फिर काटा जाता था, वो पीड़ा मेमने को सहनी पड़ती थी, और तब उसके कष्ट के सहने के कारण, उसके लहू के बहाने जाने द्वारा दूसरा मनुष्य पापों से छुटकारे को प्राप्त करता था। यही कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किया। प्रभु यीशु मसीह का कष्ट पीड़ा केवल क्रूस पर आरंभ नहीं हुई, पीड़ा तो उसकी उस दिन आरंभ हो गई थी जिस दिन उसने स्वर्ग स्थान को छोड़ करके मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया और उसने उस चरणी में जन्म लिया। उस दिन से वो तिरस्कारा हुआ व्यक्ति था, इसीलिए यशायाह 53 में लिखा है वो तिरस्कारा हुआ था, लोग उसको पहचानते नहीं थे, लोग उससे मुंह मेड़ लेते थे। जब वो सेवा में था तो सेवा में लोगों, किसी ने उसको पागल बताया, किसी ने उसका दुष्टात्मा की सहायता से काम कर रहा है, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। उसकी सेवा के समय में वो लोगों की चिंता कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन पीड़ा उसमें जुड़ी हुई थी। वो बलिदान जो हम केवल क्रूस पर देखते हैं, आरंभ तो वहां से हो गया था, चने से आरंभ हो गया था। लेकिन मेरे प्यो, वो घड़ी जब आई जो अपने अंतिम प्रार्थना में था, पिता से कहने लगा, हे पिता, यदि तेरी इच्छा हो तो ये प्याला मेरे सामने से हट जाए। उसका पसीना खून की बूंदें बन बन कर गिर रहा था। क्या वेदना उसके ऊपर थी, क्या पीड़ा उसके थी। उसके बाद उसको पकड़ लिया गया, किस तरह से उसका ठट्टा उड़ाया गया, किस प्रकार से उसके ऊपर सर पर कांटों का ताज लगाया गया, उसका ठट्टा उड़ाया गया। ओ पीड़ा के पास पीड़ा, के पास पीड़ा, लेकिन फिर भी वो मेमना जिसको योना बपतिस्मा देखने वाले ने देखते ही साथ कहा था, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को लुटा जाता है, वो मेमना मेरे और आपके लिए बलिदान हो गया। उससे पीड़ा सही है। और मेरे प्रियो, हम उसी मेमने के अनुयायी हैं, और इसीलिए उसने कहा मेरी प्रजा को जाने दे। अब परमेश्वर मेरे और आपसे बलिदान चढ़ा चाहता है, वो बलिदान नहीं जो मांस और लहू का बलिदान है, लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ चलना है तो हमें सैक्रिफाइस करना है जरूर, ना केवल हमारी इच्छाओं का, हमारे अपने बहुत सारी सोच का, विचार का, कार्यों का, बहुत सारी चीजों का। और मसीह जीवन हमेशा एक बलिदान का जीवन है। बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसे अनुभव आते हैं जब हमें प्रतिदिन निर्णय लेने पड़ते हैं, चाहे हम पड़ोसी के साथ रह रहे हैं, चाहे अन्य जातियों के साथ रह रहे हैं, चाहे उसमें साथ रह रहे हैं। अभी हमारे भाइयों के सामने सितंबर के महीने में एक परीक्षा आएंगी जो फैक्ट्री में काम करते हैं, विश्वकर्मा पूजा, जब मैं भी एचएल में था हमारे सामने आती थी, मुझे अधिकारी ने ऐसे बैठा लिया और कहने लगे तुम्हें इसमें देना है, पैसा देना है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे सहायता की। मैंने रोमियो उसके पहले अध्याय के सब कुछ खोल करके उनको पढ़कर बता दिया। कठिनाई हुई, क्रोधित हुए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम किसी भी क्षेत्र में हैं जहां हम अपने समझौते से अपने आप को हटाते हैं। मसीह जीवन में एक चीज को बहुत ध्यान में रखना है, उत्पत्ति की पहली पुस्तक को जैसे हम आरंभ करते हैं, दूसरे पद में सबसे पहला एक शब्द आता है और वो शब्द है परमेश्वर ने अंधकार और ज्योति को अलग किया। God separated light from darkness। और मैं अक्सर बोलता हूं मसीह जीवन एक अलगाव का जीवन है। मसीह यह बलिदान बहुत मुश्किल है और हमें अपने आप क्यों सीखना है, आपको अपने आप में भी सीखना है, आपको सोचना है किस स्थान पे आप प्रभु के लिए बलिदान चढ़ा सकते हैं। जब परमेश्वर को देने का समय आता है, अब देखिए किस प्रकार से बदली गई व्यवस्था बदली गई है पूरी रीति से। हम बलिदानों की बात करते हैं, हम कहेंगे क्रिश्चियन अब क्रिश्चियन बलिदान नहीं चाहते, जरूर हम लहू का फूलों का उन चीजों का बलिदान नहीं चढ़ाते, लेकिन धन्यवाद का बलिदान है जिसको हमें चढ़ाना है। परमेश्वर का वचन कहता है जो धन्यवाद का बलिदान चाहता है वो अपना चरित्र रखता है। मैं अक्सर जवान बच्चों में के बीच में जब सेशन लेता हूं तो मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं, यहां पहले बगल में बहुत अच्छे गुलाब के फूल थे, किसी गुलाब के फूल को देखकर किसी फूल को देखकर दो प्रतिक्रिया होती है, हो सकती है। पहली प्रतिक्रिया तो हुई आपने उस फूल को देखा, आपने कहा ओ कितना अच्छा है मैं तोड़ लूं इसको सूंघूं इसको, एक प्रतिक्रिया ये। चाहे आपने तोड़ा सूंघा फेंक दिया। दूसरी प्रतिक्रिया यह है उसको देखा परमेश्वर आपका धन्यवाद हो आप कितने अच्छे हैं आप सृष्टि करता है आपने कितनी सुंदर सृष्टि की है कितना है, ये सुंदर फूल बनाया है जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है। क्या हुआ या आपने बलिदान चढ़ाया जो आपके अंदर एक भावना आ रही थी कि फूल को तोड़ के आप उसको सूंघे उसके हाथ को ले ये करें, वो आपने अपने उसको सेक्रीफाइस किया और अपने अब परमेश्वर की आराधना की परमेश्वर की महिमा की परमेश्वर का धन्यवाद किया। जो परमेश्वर का धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है परमेश्वर की महिमा करता है। भजन सकता या क्या उनमें कहता है मेरे प्रियो मसीह जीवन हर कदम पे सुबह उठना है भवन में जाना है प्रभु को देना है, देते समय कैसे करना है क्या करना है, दूसरे की सहायता करनी है दूसरे के लिए सोचना है क्या करना है, प्रैक्टिकल लाइफ है। मुझे जाने दे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको इसी तरह छुड़ाया। एक दिन हम भी उस मिस्र में बंधे थे, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं उस बात को और हमें अपने मस्तिष्क में रखना है हम भी उसी स्थिति में थे लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चढ़ाए गए ताकि आज हम अपने जीवन के द्वारा उसको बलिदान चढ़ा सकें। हमारी आराधना में बलिदान हो, हमारे कार्य में बलिदान हो, हमारे देने में बलिदान हो, हमारे बहुत सारी चीजों में व्यवहारिक बातों में बलिदान हो, हमारी सोच में बलिदान हो, बहुत सारी चीज में जो हमारी इच्छाएं उनको हम बलिदान करने तैयार हो जिसमें हम सेक्रीफाइस कुछ करने तैयार हो सके, कष्ट सहने के तैयार हो, पीड़ा सहने के तैयार हो। यह अंतिम बात आगे चल के सात अध्याय में तब कहता है सोलह पद में सात के सोलह पद में और उसने कहा उनसे कहना यहोवा जो इब्राहिम का परमेश्वर है सात का सोलह उसने मुझे तेरे पास ही कहने के लिए भेजा है मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरी उपासना करें मेरी सेवा करें। पहली बात कहता मेरी सेवा करें, दूसरी बात मेरा पर्व मनाएं, तीसरी बात बलिदान चढ़ाए, चौथी बात उपासना करें, वर्शिप द लॉर्ड, उसकी उपासना करें। इसलिए मुझे उसने आज आपको छुड़ाया है ताकि मेरा और आपका जीवन एक उपासना का जीवन बन जाए, परमेश्वर की आराधना का जीवन बन जाए, परमेश्वर की महिमा का जीवन बन जाए। इसलिए उसने मुझे और आपको छुड़ाया है। कितना आपने उस क्रूस की पर दृष्टि की है, कितना आपने उस पर उसके उस बलिदान के ऊपर ध्यान दिया है। जब यहां पर आराधना का समय आता है क्यों हमारे मुंह बंद रहते हैं, क्यों ना परमेश्वर की उपासना कर सकते। इसीलिए तो हम छुड़ाए गए, हे प्रभु आपने में छुड़ा लिया, हम तो नाश हो रहे थे, कोई कीमत चुका नहीं सकता था, हम अपने आप नहीं बच सकते थे, हमारे सारे कार्य मैले चित्र फटे हुए मैले चित्रों के समान थे, सब धर्म के कार्य बेकार थे, हम अपने आप में अपने आप को नहीं बचा सकते थे। दाऊद कहता है तूने मुझे खींच कर निकाला है, तूने मुझे खींच कर निकाला है। मैं अक्सर याद करता हूं जब मैं छोटा था गांव में रहता था और मैं पढ़ रहा था और मुझे गांव में स्कूल जाना पड़ता था कच्चे रास्ते से होकर, पांचवी चौथी पांच क्लास में था, और जब मैं जा रहा था उस गांव में होकर के, बारिश के बाद कुछ सारा वो कीचड़ कीचड़ हो गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सब साफ है, बिल्कुल सूखा हुआ है, और मुझे नहीं मानता कि इसके नीचे दलदल है। मैंने जैसे ही पैर रखा, वो मेरा पैर, बायां पैर एकदम दलदल में चला गया। मैं कोशिश करने लगा निकलने के लिए, नहीं निकल पा रहा था। दूसरा पैर लगाया, दूसरा पैर भी चला गया। बहुत देर तक कोशिश करता रहा, तब उसी साइड से एक बुजुर्ग व्यक्ति चले आ रहे थे। मैंने कहा, बाबा बाबा मेरी मदद कर दीजिए मेरी। तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने, जब मैं प्रभु में आ गया और जब मैं ये वचन भजन 37 को पढ़ने लगा, और दाऊद कहता है तूने मुझे खींच कर निकाला है, उस दिन को आज भी स्मरण करता हूं। मैं तो दलदल में चला जा रहा था, अपना प्रयास कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं चलता चला रहा था। मुझे एक बूढ़े व्यक्ति की जरूरत पड़ी थी जिसने मेरे हाथ को पकड़ के खींच कर निकाला था। प्रभु का धन्यवाद हो जो सर छोड़कर नीचे आ गया, जिसने मेरे लिए, मैं तो नाश हो रहा था, आप नाश हो रहे थे, लेकिन उसने उस दलदल से निकाल लिया, अपने हाथ को बढ़ा करके मुझे और आपको जीवन दे दिया। तब क्यों नहीं हम परमेश्वर की उपासना करें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें? तब हमारे मुंह बंद क्यों रहे? तब तो हमें आनंद के साथ, उत्साह के साथ, प्रभु के महिमा के लिए, आराधना के समय जब भी मौका मिले, मुंह खोल करके, ओ क्योंकि परमेश्वर महान है, तूने अद्भुत काम किए हैं, इसलिए तूने मुझे छुड़ा लिया, ताकि मैं हर समय उठते बैठते चलते फिरते तेरी आराधना कर सकूं। दाऊद कहता है भजन संहिता 122 में पहले पद में कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन में चले, मेरा मन आनंदित हुआ। क्यों? क्योंकि वो समय था जब परमेश्वर की उपासना करने के लिए लोगों के साथ इकट्ठा होता था। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। परमेश्वर का वचन कहता है उसने मुझे निकाल लिया, मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी उपासना करें। हमारा जीवन उपासना का जीवन हो, हमारी सेवा उपासना महिमा का जीवन हो, हमारे लोगों के साथ संबंध उपासना जीवन हो, लोग हमें देख सके कि हम वो लोग हैं जो सच्चे परमेश्वर के आराधक और उपासक हैं। पिछले दो हफ्ते पहले हम बाराबंकी में थे, भाई मेरे साथ इमानुएल भी थे, और संडे चर्च के बाद हम एक व्यक्ति से मिले, वहां पर दो बच्चे एक बड़े व्यक्ति को किसी को लेकर आए, और जब हमने उनकी कहानी सुनी हम दुखी हुए। उनकी 18 साल की बच्ची तुरंत उसकी डेथ हो गई एक हफ्ते के अंदर। क्या था? उसके घर में दुष्ट आत्माओं का असर था। हालांकि लोग उनको बताते थे, रोहित की बहन की वो दोस्त थी, और बताते थे, लेकिन वो लोग उस समय याद यकीन नहीं करते थे, मानते नहीं थे। उन्होंने सब कुछ प्रयास किया, लेकिन जब ये हुआ तो उन्होंने उन्हें सब कुछ निकाल के अपने घर से फेंक दिया बाहर, कि हम इतने साल से कर रहे थे। और तब उसके बाद वो चर्च आए। फिर बाद में पिछले हफ्ते बाहर देश राज और कुछ भाई लोग उनके घर गए, विजिट करा, प्रार्थना करी, क्योंकि जान गए कि सच्चे परमेश्वर की उपासना करना क्या है, आराधना करना क्या है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर धन्य परमेश्वर है। हम किसी दूसरे उसकी आलोचना नहीं करते, लेकिन हम उस परमेश्वर की बात करते हैं जिस परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है और जो उपासना के योग्य है। हम उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज मेरा और आपका जीवन कैसा है? क्या सचमुच उपासना का जीवन है? उठते बैठते चलते फिरते लोगों से व्यवहार करते हुए चार बातें। पहली बात, प्रभु ने मुझे और आपको छुड़ाया है ताकि हम उसकी सेवा कर सकें। क्या मैं प्रार्थना करूंगा, आप प्रार्थना करेंगे आज, प्रभु आप काश मुझे समझ दीजिए, मुझे सिखाइए, मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूं, मैं सीखना चाहता हूं कि मैं कैसे आपकी सेवा कर सकूं। ये हफ्ते, ये आने वाले दिन मेरे को मार्गदर्शन कीजिए कि मैं आपका सेवा करने वाला बन जाऊं, सेवा करने वाला। मुझे बताइए, मुझे दिखाइए, मैं तो अनभिज्ञ हूं, मुझे आपकी जरूरत है, आपके पवित्र आत्मा जरूरत है, आपके वचन की जरूरत है, आपके लोगों की सहायता की जरूरत, द्वारा सहायता की जरूरत है, ताकि मैं सच में आपका सेवक और सेविका बन सकूं। चाहे वो मेरे व्यवहार से, चाहे वो मेरे कार्य से, चाहे वो मेरे देने से, चाहे साक्षी से, चाहे किसी रीति, आप मुझे बताइए कहां मैं आप कैसे आपकी सेवा कर सकूं। मैं प्रभु आपके पर्व को और आनंद के साथ मनाना चाहता हूं, मुझे वो आनंद दे दीजिए कि मैं आपका पर्व मना सकूं। प्रतिदिन मेरे लिए आपका पर्व है क्योंकि आप जी उठे प्रभु हैं। जब मैं सुबह उठूं कहूं प्रभु आपका धन्यवाद हो, आज यदि मेरे नया दिन है, जी उठा दिन है प्रभु आप जी उठे हैं, मैं आपको पा सकूं, आपका राधक हूं, मेरे को उस हर्ष में रखिए ताकि मैं आपका पर्व मना सकूं, मुझे बताइए, मुझे दिखाइए, प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मेरी आप सहायता कीजिए ताकि ना केवल मैं बलिदान चढ़ा सकूं। आज कौन सा बलिदान मैं चढ़ा सकता हूं? किसी को अपना समय देने के द्वारा, किसी की सहायता करने द्वारा, कलीसिया में कुछ करने द्वारा, अपने धन के द्वारा, अपने समय के द्वारा, किसी तरह से कैसे मैं बलिदान चढ़ाता हूं, मुझे सिखाइए, मुझे सहायता कीजिए, मैं बलिदान कर सकूं। प्रभु मैं आपका एक अच्छा उपासक बनना चाहता हूं, मैं आपकी एक अच्छी उपासक क्या बनना चाहती हूं, मेरी सहायता कीजिए, मैं कैसे कर सकता हूं, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है, बिना आपके मैं कुछ नहीं कर सकता, हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु का वचन कहता है वो मुझे और आपको संभालने के तत्पर है, तत्पर है। शायद हम परीक्षा में गिरे होंगे, शायद हम परीक्षा में हारे होंगे, हम परास्त होंगे, निराश होंगे, लेकिन प्रभु कहता है तुम परेशान मत हो, परमेश्वर सामर्थ्य से बाहर तुम्हें परीक्षा में नहीं गिरने देगा, परंतु तुम्हारा निकास करेगा, तुम्हें उठा खड़ा करेगा ताकि तुम उसकी सेवा कर सको, ताकि तुम उसके लिए जी सको। मेरे प्रिय भाई बहनों, काश जब आज इस भवन को आप छोड़ें, आप एक निर्णय के साथ जा सकें, सोचें कि चार बातों में आप कैसे परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको छुड़ाया है। आप कैसे, प्रभु आपने मुझे छुड़ाया है, इसलिए छुड़ाया है, इसलिए मैं करना चाहता हूं, आप मेरी सहायता कीजिए।